हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब तो आर्यन ने उसकी बात सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और थोड़ा सा तेज आवाज में चिढ़ते हुए बोला, जस्ट शट अप। झलक मेरे साथ यहाँ इस नाइट बार में आई थी और पिछले आधे घंटे से वो मुझे कहीं मिल नहीं रही है। अगर झलक को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारे इस नाइट बार को तो आग लगा ही दूंगा सिद्धार्थ खुराना, साथ ही साथ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब आर्यन की इतनी गुस्से वाली आवाज सुनकर, साथ ही ये सुनकर कि झलक वहां से गायब हो गई है, अचानक सिद्धार्थ को अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। ये पहली बार था जब सिद्धार्थ खुराना का दिल अनजाने में डर से कांप सा गया था और वो फिर खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करके बोला, क्या मतलब, झलक कहाँ गई है, बोलो जवाब तो। तभी आर्यन ने एक गहरी लंबी सांस लेकर कहा, झलक और मैं नाइट बार में आए थे, लेकिन अचानक से झलक यहाँ से गायब हो गई है, इसीलिए मैं बस फुटेज देखना चाहता हूँ कि आखिरकार झलक कहाँ जा सकती है। अब जल्दी से सिद्धार्थ खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करके कड़क में बोला, फटाफट से मुझे मेरी टीम से बात करवाओ। और जल्दी ही सिद्धार्थ ने अपनी मॉनिटरिंग टीम से बात की थी और मॉनिटरिंग टीम को उसने बोल दिया था कि आर्यन को सारी फुटेज दिखाएं। और आर्यन गौर से फुटेज देखने लगा था जहां पर उसे झलक बाहर जाती हुई दिखाई दी, लेकिन कुछ ही देर में दो लोग उसे अपने कंधे पर उठाकर कहीं ले जा रहे थे और झलक बेहोश थी, ये भी साफ दिखाई दे रहा था। अब तो आर्यन ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और फटाफट से वो बाहर झलक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसने उस कार का नंबर देख लिया था जिस कार में वो झलक को लेकर जा रहे थे और इसीलिए वो फटाफट से अपनी कार से सड़कों पर दौड़ने लगा। वहीं दूसरी ओर जब आधे घंटा होने के बाद भी सिद्धार्थ को कोई खबर नहीं मिली, उसका दिल पूरी तरह से बेचैन था, इसीलिए उसने फटाफट से मॉनिटरिंग रूम में अपने आदमी को फोन किया और पूछा कि इस सीसीटीवी फुटेज में क्या था। तो उसके आदमी ने सिद्धार्थ को कहना शुरू कर दिया था कि उस लड़की का किडनैप हुआ है और दो लोग उसे कार में कैद कर दिया था। झलक अभी भी बेहोशी का नाटक कर रही थी, तभी रमेश सुरेश की ओर देखकर आहिस्ता से बोला, ये लड़की स्मोकिंग करती है, जितने भी इसके सिगरेट रखे हैं ना, एक काम कर, इतनी सारी सिगरेट्स इसके कूड़ेदान में डाल दो, अगर कि हम यहाँ आग लगाएंगे तो आग लगने का कारण में अगर जांच होने लगेगी तो सबको यही पता लगेगा कि ज्यादा सिगरेट पीने के कारण और इस लड़की की लापरवाही से घर में आग लग गई और ये नशे में थी। तो इस तरह से वो झलक को मारकर उसके पूरे मर्डर को नशे का नाम देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ सिगरेट्स के पैकेट फर्श पर मोड़कर कूड़ेदान के अंदर फेंक दिए थे और जल्दी ही फर्श पर आग लगाने के बारे में सोचने लगे और तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। वहीं झलक अब उनके जाने के बाद तुरंत उठकर बैठ गई थी और खुश होकर मन में सोचने लगी, कितने बेवकूफ लोग हैं, एक बार मुझे चेक भी नहीं किया कि मैं बेहोश हूँ या नहीं। तब अचानक झलक को एक बार फिर उन लोगों के कदमों की आहट सुनाई दी और एक बार फिर वो सोफे पर आंखें बंद करके लेट गई। रमेश कुछ पल बाद सुरेश की ओर देखकर एकदम से बोला, यार वैसे भी ये नशे में थी और हमने जो इसे नशे दवाइयां दी थीं, मुझे लगता है कि उस दवाई का असर थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, क्यों न हम इसे एक बार फिर से बेहोश कर दें। अब जैसे ही रमेश ने सुरेश से ये कहा, झलक को हैरानी और वो परेशान हो उठी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो इन दोनों को बेवकूफ कह रही थी और ये दोनों समझदारी से उसे फिर से बेहोश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तब सुरेश ने रमेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए फटाफट से एक रुमाल लेकर झलक के मुंह के आगे कर दिया और उसका मुंह दबाने लगा। झलक कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकती थी। जब रमेश को इस बात का यकीन हो गया कि झलक पक्का बेहोश हो गई है और अब बिल्कुल भी होश में नहीं आ पाएगी, तब जाकर उसने उसे छोड़ा और फटाफट से झलक को वहीं छोड़कर वो दोनों कमरे में धीरे धीरे आग लगाकर बचते हुए सीधा वहां से बाहर निकल गए थे। वहीं झलक जो अपनी सांस रोक बैठी थी, कितनी ही देर बाद उसने खुलकर राहत सांस ली थी और उसने इधर उधर गौर से देखा कि अब धीरे धीरे आग पूरे फ्लोर पर फैलने लगी है। झलक को बिल्कुल भी डर का एहसास नहीं हुआ। फटाफट से झलक वहां से उठी और सीधा जाकर उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और ठंडे पानी का नल अपने ऊपर चला दिया। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना को अभी तक ये पता नहीं लग पाया था कि आखिरकार झलक कहाँ गई है। उसके दिल में अजीब सा डर महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने डिसीजन ले लिया था कि वो खुद जाकर झलक को ढूंढेगा। अब क्योंकि रात काफी गहरी हो चुकी थी, अब वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए वो लंबे कदमों से फटाफट से बाहर निकलने लगा। अचानक उसकी निगाह आकांक्षा के ऊपर पड़ी। अगले ही पल वो अनजान बनते हुए अपनी निगाहें फेर कर बोला, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अब आकांक्षा अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठी थी। उसे लगने लगा था कि जरूर सिद्धार्थ अब झलक को बचाने के लिए ही जा रहा है। कुछ पल सोचते हुए अचानक उसने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया और बिना उसे कुछ बोले तुरंत सिद्धार्थ चौड़े से सीने में अपना सर छुपा लिया और उसे कस कर गले से लगाकर अदा से बलखाती हुई बोली, प्लीज सिद्धार्थ, तुम इस वक्त कहीं मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो जानते हो ना कि मैं पहले भी अस्पताल में रही हूँ जब झलक ने मुझ पर हाथ उठाया था, और अब तुम इस तरह से चले जाओगे तो मेरा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। इस वक्त आकांक्षा पूरी तरह से अपने आप को सिद्धार्थ के ऊपर ठोप रही थी ताकि सिद्धार्थ की भावनाएं उसे लेकर कुछ बदल जाएं, क्योंकि आकांक्षा को अपनी खूबसूरती और अदाओं पर पूरा भरोसा था। आखिरकार उसके जितनी होशियार, खूबसूरत और सब चीजों में माहिर लड़की पूरे शहर में कोई नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने पहले आकांक्षा को कंधों से पकड़कर खुद से दूर किया और बिना भाव दिए बोला, देखो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं अपने असिस्टेंट रौनित को बोल देता हूँ, वो तुम्हारे पास रुक जाएगा, ठीक है? ये बोलकर बिना उसकी कोई बात सुने सिद्धार्थ वहाँ उसे अनदेखा करके चला गया। अब आकांक्षा अपना मन महसूस कर रह गई थी। उस वक्त आकांक्षा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि टेबल कुर्सी उठा उठाकर फेंक दे, लेकिन इस वक्त वो अस्पताल में दादी की देखभाल करने के लिए रुकी हुई थी तो वो वहाँ ज्यादा शोर शराबा नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अपना गुस्सा काबू करके रह गई थी। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना ने सड़कों पर कार दौड़ाना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ ने आर्यन को फोन किया और फिक्र भरी आवाज में उसे पूछा, बताओ झलक कहाँ है? उसने सीधे सीधे फोन पर झलक के बारे में पूछा। तब आर्यन, जो कि सिद्धार्थ से गुस्सा था, ये सुनकर आर्यन उसे झिड़की देते हुए बोला, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, झलक कहाँ है याद रखना सिद्धार्थ खुराना, अगर झलक को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने इतना बोलकर गुस्से से फोन काट दिया। अब तो सिद्धार्थ बहुत भड़क गया। फिलहाल उसने गुस्से से अपने असिस्टेंट रौनित को फोन लगाया और कठोरता से बोला, पता लगाओ कि झलक इस वक्त कहाँ है। केवल 5 मिनट के अंदर अंदर ही रौनित सिद्धार्थ को फोन करके बोला, सर, जो 2 आदमी झलक को किडनैप करके ले गए हैं उनकी कार को शीतल अपार्टमेंट वाले रोड की तरफ जाते हुए देखा गया है, तो हो सकता है कि झलक मैडम वहीं हो। अब जैसे ही रौनित ने ये बताया, सिद्धार्थ ने गाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी और वो अपनी गाड़ी पूरी 100-120 की स्पीड से चलने लगता है, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद फिर से उसके असिस्टेंट को कॉल आया।
तब सिद्धार्थ परेशान होकर चिढ़ते हुए बोला, क्या हुआ, फोन क्यों किया है? तभी थोड़ी सी घबराई हुई आवाज में उसका असिस्टेंट रौनित हकला कर बोला, शीतल अपार्टमेंट में आग लग गई है।